हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दार्जिलिंग रॉक गार्डन। अर्णव और ध्रुति उस दिन मॉल रोड पहुँचे थे। वहाँ से 15-20 मिनट की चढ़ाई के बाद वे वेधशाला हिल पहुँचे। ऑब्जर्वेटरी हिल दार्जिलिंग के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर का घर है। इसे हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध लोग भी पवित्र मानते हैं। मंदिर में भक्त महाकाल की पूजा अर्चना करने आते हैं। अर्णव ध्रुति को लेकर महाकाल के मंदिर आया था। दोनों ने मिलकर महाकाल की पूजा अर्चना की। ध्रुति ने क्या मांगा ये तो केवल वही जानती थी, पर अर्णव ने अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ जीवन भर के लिए ध्रुति का साथ मांगा था। साथ ही थोड़ी हिम्मत भी मांगी थी ताकि वो ध्रुति को सारी हकीकत बता सके। अब महाकाल उसकी मनोकामना पूरी करेंगे या नहीं ये तो केवल वही जानते थे, पर यहाँ आकर दर्शन करने से अर्णव को इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि ध्रुति का मूड ठीक था और वो उसके साथ सामान्य व्यवहार कर रही थी। महाकाल के दर्शन के अलावा कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी यहाँ का मुख्य आकर्षण था। आसमान साफ था इसलिए वहाँ से कंचनजंगा की चोटियों के मनोरम नज़ारों को देखा जा सकता था। ध्रुति ने मनोरम नज़ारों को जी भरकर देखा था। ये उसके लिए एक नया अनोखा और रोमांचक अनुभव था और उसने थोड़ी ट्रैकिंग भी की थी। यहाँ से वापस मॉल रोड आने में उन्हें दोपहर हो गई थी। मॉल रोड दार्जिलिंग के मध्य में एक हलचल भरा बाजार है। ये हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, चाय और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानों से भरा पड़ा है। कई प्रकार के व्यंजन परोसने वाले कई रेस्टोरों और कैफे भी मौजूद थे। उन्होंने वहाँ स्ट्रीट फूड का मज़ा लिया, फिर थोड़ी बहुत खरीदारी के बाद अपने अगले गंतव्य के लिए निकल गए। दार्जिलिंग रॉक गार्डन। हरी भरी घाटी में स्थित बारबोटी रॉक गार्डन दार्जिलिंग से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये सुरम्य नज़ारों से भरा हुआ है। ध्रुति के साथ अर्णव यहाँ आया, जहाँ उन्होंने प्राकृतिक सुंदर झरना और कई फूल वाले पौधे देखे। गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती थी। इस सीढ़ीदार रॉक गार्डन के अलग अलग स्थानों पर बैठने की जगह भी थी। पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने काफ़ी समय वहां बिताया। प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया। आराम करने और शांति में खुद के साथ कुछ समय बिताने के लिए ये एक बेहतरीन जगह थी। शाम को दोनों वहां से निकले। वे आज जल्दी होटल चले गए थे। डिनर भी जल्दी हुआ और थकान से चूर दोनों नींद के आगोश में समा गए। अगला दिन भी इसी तरह बीता। ये उनके वेकेशन का आखिरी दिन था, इसलिए सुबह जल्दी निकलकर उन्होंने कई जगह घूमने गए और रात में बाहर डिनर करके काफ़ी देर से होटल लौटे। तीन दिन जैसे पलक झपकते ही बीत गए थे और उसके बाद उन्होंने वो काम शुरू किया जिसके लिए उनका यहाँ आना हुआ था। अर्णव की सहायक के तौर पर ध्रुति अगले दो दिन उसके साथ मीटिंग में भी गई थी। उसने काम भी संभाला था और तीसरे दिन जाकर सब चीज़ें फाइनल हुई थीं। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। तीन दिन लगातार काम में व्यस्त रहने के बाद उनके पास एक आखिरी दिन बचा था। उस दिन शाम को उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में जाना था और दिन में दोनों फ्री थे, पर आज वे कहीं घूमने नहीं गए थे, बल्कि आज का पूरा दिन दोनों ने होटल रूम में आराम करते हुए बिताया था। शाम का समय था, दोनों को मॉल की ओपनिंग सेरेमनी में जाना था जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। अर्णव ने आज की पार्टी के लिए ध्रुति को विशेष पोशाक भी दिलवाई थी। इस समय अर्णव सफ़ेद फॉर्मल शर्ट के साथ काले टक्सीडो सूट पहने बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था। बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी के साथ वही हमेशा वाला सख्त भाव। गहरी काली आंखों पर धूप का चश्मा लगा हुआ था। बाएं हाथ में अच्छी से कपड़ों से मेल खाती घड़ी पहनी थी और पैरों में फॉर्मल काले जूते। उसकी रौबदार आकर्षक पर्सनालिटी काले रंग में और भी उभर कर सामने आ रही थी। वो दिलकश लग रहा था और उसके चेहरे पर मौजूद कठोर भाव उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। अर्णव अपने फ़ोन में व्यस्त था और उसे अब ध्रुति का इंतज़ार था, क्योंकि आज पिछले डेढ़ महीने की मेहनत का परिणाम मिलने वाला था। अर्णव ये देखने की बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था कि ध्रुति की पर्सनालिटी में कितने बदलाव आए हैं, वो किस स्तर तक पहुंची है और उसी के अनुसार आगे उस पर कितनी मेहनत करनी है ये तय किया जाना था। उसी पर उसका आगे का प्लान भी निर्भर करता था। कुछ देर बाद उसका ये इंतज़ार भी खत्म हुआ और ध्रुति ने वहाँ प्रवेश किया। उसने काले रंग का खूबसूरत सा इवनिंग गाउन पहना हुआ था। चेहरे पर एकदम हल्का मेकअप था जो देखने पर नजर नहीं आ रहा था, पर उसके रंग रूप के निखारने में कारगर साबित हुआ था। बालों को लहराते हुए बन में बांधा हुआ था, जिससे निकलती कुछ कर्ली लटें बेबाकी से उसके गालों को चूमते हुए इठला रहे थे। मांग में हल्का सा सिंदूर लगा था जो दूर से देखने पर मुश्किल से ही नजर आ रहा था। सुनहरी आंखों का काजल, आईलाइनर और आई शैडो से श्रृंगार करके उनकी खूबसूरती निखारी गई थी। लाल रंग में रंगे होंठ बेहद आकर्षक लग रहे थे। बाएं हाथ में खूबसूरत सी घड़ी पहनी थी तो दाएं हाथ में ब्रेसलेट मौजूद था। साथ ही क्लच भी कैरी किया हुआ था जो ड्रेस से मेल खाता था। कानों में हीरे के झुमके डाले हुए थे जिसके सेट का पेंडेंट उसके गले की शोभा बढ़ा रहा था। आज उसने मंगलसूत्र नहीं पहना था, वो पेंडेंट ही मंगलसूत्र का काम कर रहा था। इस रूप में वो बेहद मनमोहक लग रही थी। वो जल्दी से वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती थी और पहनती तो घबराहट उसके चेहरे पर झलकती थी। हील्स में चलना तो दूर, ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल होता था उसके लिए, पर आज जो धृति उसके सामने थी उसमें कई बदलाव देखने को मिल रहे थे। आज धृति के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि आत्मविश्वास का तेज झलक रहा था। चेहरे पर नूर बिखरा था और आंखों में आकर्षण समाया था। उस वेस्टर्न ड्रेस में भी वो पूरी तरह से सहज नजर आ रही थी। आज अपना मेकअप भी उसने खुद किया था जो बिल्कुल परफेक्ट था। हील्स में वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। आज धृति अर्णव को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी और ये देखकर अर्णव के होंजों पर गर्व भरी मुस्कान ठहर गई थी। सॉरी, तैयार होने में ज्यादा वक्त लग गया। समझ नहीं आ रहा था कि बालों को कैसे करूं। छोटे होते तो खुले रख लेती, पर लंबे हैं इसलिए सेट करने में ज्यादा वक्त लग गया। धृति ने आते ही उससे देरी के लिए माफी मांग ली, जिसे सुनकर अर्णव हल्के से मुस्कुराया, फिर उसकी हथेली थामते हुए बोला, इट्स ओके, टाइम लिया पर बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो उस टाइम की पूरी भरपाई हो गई। बस अब जरा जल्दी चलो वरना काफी लेट हो जाएंगे। धृति ने सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ी। आगे बढ़ते हुए अर्णव का ध्यान आगे था, जबकि धृति का ध्यान उस हथेली पर था जिसे अर्णव ने पूरे हक से थामा हुआ था। सारे रास्ते अर्णव की नजरें बार बार भटकती हुई धृति पर आकर ठहर जाती। धृति भी बीच बीच में चोरी छिपे उसे देख रही थी। बीते दिनों में उसने देखा था कि अर्णव उसकी काफी इज्जत करता है और उसकी रक्षा भी करता है। एक बार फिर कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे थे। खैर, रास्ता कटा और कार मॉल के प्रवेश द्वार के सामने आकर रुकी। रंगीन रोशनियों से जगमगाता उस मॉल का बाहरी हिस्सा बहुत खूबसूरत था। वहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, मीडिया कर्मी मौजूद थे और साथ ही कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी शामिल थीं। अर्णव और धृति साथ में गुलदस्ता लेकर अंदर प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अभी उद्घाटन नहीं हुआ था पर कैमरामैन अपने काम में लग चुके थे। अर्णव मिस्टर भट्ट से मिला, उन्होंने भी बड़ी ही गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। धृति का भी बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने उन्हें गुलदस्ता देते हुए उन्हें बधाई दी। मुख्य अतिथि के आने पर रिबन काटा गया और सबने उस आलीशान मॉल में प्रवेश किया। सबसे पहले मिस्टर भट्ट ने उद्घाटन भाषण दिया जिसमें उन्होंने मॉल की कई खासियत बताई, साथ ही आरके एंटरप्राइजेस के साथ सहयोग के बारे में भी बताया। उन्होंने अतिथियों के आने के लिए भी धन्यवाद दिया। उसके बाद मीडिया के साथ अतिथि मॉल घूमकर देखने लगे। अर्णव और धृति कुछ देर मिस्टर भट्ट के साथ रहे। व्यापार की बातों के साथ हंसी मजाक भी चला। उसके बाद मिस्टर भट्ट ने उन्हें साथ लेकर पूरा मॉल घुमाया जो वाकई बहुत खूबसूरती से बनाया गया था।
फूड प्लाजा में सबके खाने पीने का प्रबंध किया गया था। मिस्टर भट्ट के परिवार और कुछ खास अतिथियों के साथ अर्णव और धृति ने भी भोजन किया। यहाँ भी अर्णव ने धृति में काफी बदलाव महसूस किए। वो अब पूरी तरह से उन लोगों में घुल मिल गई थी। यहाँ सब उससे बड़े ही आदर से पेश आ रहे थे और धृति भी काफी खुश नजर आ रही थी। अर्णव भोजन करके ही फ्री हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। कबीर का कॉल देखकर अर्णव ने कुछ पल सोचा, फिर धृति की ओर उड़ते हुए बोला, धृति तुम यहीं रहना, मैं बस अभी आया। कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर? टू बी कंटिन्यूड।